ओम दं सत्यं सर्वदा। विषय है ईश्वर सिमरन द्वारा मानव का कल्याण कैसे। ये विषय अध्यात्म विद्या का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि एकाग्रचित होकर इसको सुनने का प्रयास करें। इस विषय को पूरी तरह से समझने के लिए इसमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रत्येक शब्द को यदि ठीक प्रकार समझ लिया जाए तो यह पूरा विषय आपकी स्वतः ही समझ में आ जाएगा। तो ईश्वर सिमरन द्वारा मानव का कल्याण कैसे अथवा मंगल कैसे, तो इसमें सबसे पहला शब्द है ईश्वर। ईश्वर क्या है? ईश्वर को सत भी कहते हैं या सत्य भी कहते हैं। तो सत उस वस्तु को कहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वो सदैव एक ही अवस्था में स्थित रहती है, उसको सत कहते हैं। लेकिन यदि यही परिभाषा सत की हो तो हमारे मन में आ सकता है कि हम क्या करेंगे फिर इस वस्तु का। इसीलिए सत के साथ या ईश्वर के साथ एक और चीज जुड़ी होती है। वो कहते हैं कि ईश्वर आनंद रूप होता है, वो नाशवान भी नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता और सदैव एक जैसा रहता है। ऐसा होते हुए भी वो आनंद रूप भी है, इसीलिए वो हमारे मन को खींच लेता है। जिसके अंदर ईश्वर प्रकट हो जाता है वो व्यक्ति भी हमको खींच लेता है। ये पहचान है कि ईश्वर आनंद रूप है, अन्यथा हम ईश्वर का क्या करते हैं? इसको एक उदाहरण के द्वारा निराश समझने की कोशिश करें। देहरादून की घटना है, उस समय ये संत प्रकाश ग्रंथ का ये प्रिंट हो रहा था, संशोधन चल रहा था, तो प्रेमी भाई ओम कपूर जी उस समय महाजी के पास बैठा करते थे। तो एक दिन उनके मित्र डॉक्टर मदन मोहन जी महाजी के पास पहुंचे, तो बैठे हुए थे दोनों, तो गुरुदेव ने मदन मोहन जी से एक प्रश्न कर दिया। वो प्रेमी, तुमने इनके अंदर क्या देखा?
प्रेमी बोले कि महाराज जी, मैंने आपके अंदर ईश्वर देखा। बोले ईश्वर क्या होता है? प्रेमी चुप। अब ओम कपूर जी के मन में बेचैनी, मेरा जो है जो दोस्त था वो तो हार गया, चुप हो गया वो। बोले तो महाराज जी मैं बताता हूं। बोले बताओ प्रेमी। बोले महाराज जी, मैं बराबर टेंट में ठहरा हुआ हूं, आप मुझको तीन बार वहां भेज चुके हैं कि प्रेमी जाओ, और काम छोड़ के फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। तो पता नहीं आपके अंदर क्या जादू है कि बार बार मुझे आपकी तरफ खींच लाता है। तो गुरुदेव बोले, हां प्रेमी तुम ठीक कहते हो, तो यही आनंद है कि जीव को उस सत्पुरुष के पास बैठकर आनंद की अनुभूति होती है। उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, उसका वर्णन तो नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव कर सकता है कि कोई चीज को खींच रही है। जैसे कि सुंदर दृश्य आपको खींचता है, सुंदर रूप आपको खींचता है, सुंदर वस्तु आपको खींचती है, ठीक उसी प्रकार सत्पुरुष के अंदर जो आकर्षण होता है, क्योंकि वहां प्रभु का आनंद हिलोरे ले रहा है, इसलिए वो आनंद उनके चारों वातावरण में भी फैला होता है। जो जीव भी उस वातावरण में पहुंचेगा, उस सीमा के अंदर पहुंचेगा, वो भी आकर्षित हो जाता है। तो ईश्वर सबके साथ साथ आनंद रूप भी है। अगला शब्द इसमें प्रयोग हो रहा है इस विषय में, सिमरन। सिमरन क्या होता है? किसी चीज को बार बार याद करना, इसी को सिमरन कहते हैं। सिमरन का मतलब है स्मरण। किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को, किसी भी चीज को बार बार याद करना, ये सिमरन कहलाता है। लेकिन सिमरन भी दो प्रकार का होता है। एक तो आप किसी चीज को याद करते हो, लेकिन कुछ चीज आपको याद आती रहती है, आप करते नहीं हो, याद आपको आती रहती है। जैसे कि जो ईश्वर के नाम का जाप करते होंगे, उनको तो बड़ा अनुभव होगा इस बात का कि मंत्र का जाप करने बैठे, अन्य विचार, अन्य संकल्प दिमाग में बार बार आ रहे हैं, उनको हम भगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं। रात को चैन से सोने के लिए लेटे हैं, वहां तरह तरह के संकल्प उठ रहे हैं, या तो नींद नहीं आ रही है, आगे तो स्वप्न आ रहे हैं। तो एक तो हम याद करते हैं और एक याद हमको आती है। इस तरह से दो प्रकार का सिमरन हमारे साथ चला सकता है। एक तीसरी चीज है, तीसरा शब्द है मानव। ये मानव क्या है? गुरुदेव ने समता विलास में एक जगह कहा कि बुद्धि ही जीव है। देखिए, ये जो सिमरन है, सिमरन क्या है कि तरह तरह के संकल्प जो आपके अंदर उठते हैं, उसके जो ध्यान जाता है, यही तो सिमरन है। इसी को ही दूसरे शब्दों में मन भी कहते हैं। मन और कुछ नहीं है, इन संकल्पों का समूह ही मन है। इसलिए गुरुदेव की वाणी कह रही है, मन का सिमरन रूप पछान, जैसी सिमरे होए गलतान, माया सिमरे माया में भरमाई, सिमरे राम तब राम समाई। कि मन का स्वरूप सिमरन ही है। यदि माया को स्मरण करता है तो ये माया रूप हो जाता है, और जो राम को अर्थात ईश्वर को स्मरण करता है तो ये ईश्वर रूप हो जाता है। तो सवाल ये है कि मनुष्य कौन है? फिर गुरुदेव कहते हैं ये बुद्धि ही जीव है, बुद्धि ही मानव है। तो बुद्धि कौन है? आप जब सिमरन में बैठते हैं तो तरह तरह के संकल्प जो मन में होते हैं उनको आप देखा करते हैं, आपको पता था हां ये संकल्प उठा, और उस संकल्प को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इन संकल्पों का जो दृष्टा है, या इन संकल्पों को जो देखने वाली सत्ता इस शरीर में मौजूद है, यही मैं हूं या यही मनुष्य है। इसी को ही बुद्धि भी कहते हैं। ये निश्चय भी करती है क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये संकल्पों का दर्शन भी करती है, संकल्पों की दृष्टा भी। तो यही मनुष्य है, और कल्याण भी इसी मनुष्य का, इसी बुद्धि का, इसी जीव का होना है। तो अगला आगे कहते हैं कल्याण या मंगल। तो ये कल्याण क्या है? गुरुदेव इसकी परिभाषा करते हैं समता विलास में, कहते हैं कि असली कल्याण यही है कि जीव की सब कामना कल्पना नाश हो जावे। असली कल्याण यही है कि जीव की सब कामना कल्पना नाश हो जावे, मृतक काल का भय बिल्कुल चित्त से नाश हो जावे, अविनाशी तत्व को प्राप्त करके आनंद स्वरूप हो जावे। देखिए, तीन चीजें इसमें हैं। कि सबसे पहली तो कोई भी संकल्प या कोई भी कामना हमारे अंदर ना रहे। जब संकल्प ही खत्म हो गया और विचार करने की बात है, इसका मतलब हुआ कि मन ही वहां से समाप्त हो गया, क्योंकि मन तो सिमरन रूप है, संकल्प रूप है। जब संकल्प खत्म तो मन की सत्ता भी वहां पर खत्म हो जाती है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि मौत का भय बिल्कुल नाश हो जाए, तो भय भी मन में ही होता है, भय का भी तो संकल्प ही होता है। तो जब उसका कल्याण होता है उस समय उसके अंदर मौत का भय नहीं रहता। और कहते हैं कि अविनाशी तत्व को प्राप्त करके आनंद स्वरूप हो जाते हैं, ईश्वर का दर्शन करके, ईश्वर को प्राप्त करके वो ईश्वर रूप ही हो जावे, क्योंकि ईश्वर आनंद रूप है। इसीलिए एक अन्य जगह उन्होंने परिभाषा की, वो भी सुन ले हम जरा। वो कहते हैं कि अहंकार रहित होकर परमानंद स्वरूप में लीन होना ही कल्याण है। तो अहंकार रहित होकर परमानंद स्वरूप में लीन होना ही कल्याण है, ये इससे आगे और बढ़कर ये बात कह रहे हैं। अहंकार किसको है? बुद्धि को ही तो अहंकार है कि मैं करता हूं, यही तो मानव है, यही तो जीव है, यही तो संकल्प विकल्प या मन का दृष्टा है। यह बुद्धि ईश्वर में लीन हो जाती है। जैसे ये बुद्धि दृष्टा है, ऐसे ईश्वर भी दृष्टा है। इस शरीर में रहते हुए हम अपने संकल्प को पढ़ सकते हैं, अपने संकल्प को जान सकते हैं कि हमारा कौन सा संकल्प उठ रहा है, क्या हमारे अंदर इच्छा उठ रही है। लेकिन जो सत्पुरुष होता है, जो गुरु होता है, जिसके जिसका अहंकार उस ईश्वर तत्व में लीन हो चुका है, या यूं कहें मन और बुद्धि उस ईश्वर में लीन हो चुकी है, वो भी दृष्टा होता है। लेकिन हम में और उसमें भेद क्या है कि हम तो मात्र अपने शरीर के दृष्टा है, अपने संकल्प के दृष्टा है, लेकिन जो सत्पुरुष है, जो उस ईश्वर तत्व में स्थित हो चुका है, जो ईश्वर तत्व में आनंदित हो चुका है या आनंद में स्थित हो चुका है, उसके अंदर यह शक्ति होती है कि वो सर्वद्रष्टा होता है, सब कुछ देख सकता है। कैसे? गुरुदेव के जीवन से एक उदाहरण देखें। गुरुदेव के परम शिष्य हुए बाबू अमोल अकराम जी, जो जीवन गाथा आप देखते हैं ये उन्हीं का कलेक्शन है। आश्रम भी उन्होंने निर्माण करवाया, काफी वक्त जो है महा जी के साथ रहे। गंगोठी आश्रम भी उन्होंने निर्माण कराया और वक्त से पहले ही रिटायरमेंट लेकर महा जी के साथ खोलिए थे। तो जब गुरुदेव के संपर्क में आए और उनसे जब दीक्षा ली, उसके पश्चात एक दिन गुरुदेव उनके पास पहुंचे बाबू अमोल राम जी। गुरुदेव के संपर्क में आने से पहले ये जो संस्था आप सब जानते होंगे कि राधा स्वामी नाम की जो संस्था है, वहां से उन्होंने नामदान लिया था और उसी का वो जाप किया करते थे। तो गुरुदेव से दीक्षित हो चुके, तब भी उन्होंने गुरुदेव का जो मंत्र था वो तो जप नहीं करते थे, वो वही पुराना जप किया करते थे। तो गुरुदेव उनके पास जब पहुंचे तो उनका प्रेमी, इनका दिया हुआ मंत्र तुम जप नहीं करते हो, तुम वही पुराना मंत्र जाप कर रहे हो। अब बाबू अमोल राम जी को आभास हुआ कि गुरु वास्तव में अंतर्यामी होता है, ये सर्वद्रष्टा है, ये सबके मन के संकल्प को देख सकता है। इसीलिए गुरु जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी होता है और गुरु भी सर्वव्यापी होता है। इसलिए महर्षि रमण कहा करते थे, एक बार महर्षि रमण से पूछा गया, उनका शिष्य बोला कि भगवान एक गुरु के होते हुए क्या दूसरे गुरु के प्रति आदर प्रकट किया जा सकता है? तो महर्षि रमण कहते हैं गुरु एक ही होता है और वो ईश्वर है। हम समझते हैं कि एक पूर्व में बैठा है, एक पश्चिम में बैठा हुआ है, ये दो गुरु बैठे हुए हैं, गुरु एक ही होता है और वो ईश्वर है। इसीलिए गुरु सर्वव्यापक होता है। तो जिसने इस रूप में गुरु को देखा है, समझा है, वो शिष्य गलती नहीं करता, जिसे उसको शरीर समझ लिया है वो गलती कर जाता है। तो ये जो बात आ रही थी कि अहंकार रहित होकर परमान स्वरूप में लीन होना, इसका मतलब यह है बुद्धि उस ईश्वर को अपने शरीर में जब अनुभव करती है उस समय ये अपने आप को उसमें लीन कर देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई नदी समुद्र में जाती है तो अपने स्वरूप को लीन करके वो खुद समुद्र रूप हो जाती है, जो वो नदी नहीं कहलाती फिर वो समुद्र कहलाती है। ठीक उसी प्रकार ये जीव जो है उस समय फिर ये ईश्वर कहलाता है, गुरु कहलाता है या सत्पुरुष कहलाता है, और वो उसकी पूर्ण आनंद की अवस्था होती है, कोई मृत अवस्था नहीं है वो। इसीलिए जो कल्याण है वो इस बुद्धि को उस आत्मा में, उस ईश्वर तत्व में लीन करने में है। इससे पहले कल्याण अन्य कुछ नहीं होता। तो कहते हैं कि वो कल्याण कैसे प्राप्त, अब अंतिम शब्द आता है कैसे, ईश्वर सिमरन द्वारा मानव का कल्याण कैसे। तो जब बात कैसे की आती है कि किस प्रकार कल्याण हो, तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि बुद्धि को ईश्वर का निश्चय होना चाहिए। इसीलिए संत अभिलाष में एक जगह आया कि आत्मा का निश्चय ही कल्याण का मूल है, कल्याण की जड़ है। तो कल्याण का पौधा जहां से उगना है वो जड़ से ही तो पौधा उगेगा। तो जड़ क्या है, वो ईश्वर विश्वास या आत्मनिश्चय ही ये कल्याण की जड़ है। जिसके अंदर आत्मनिश्चय ही नहीं, ईश्वर विश्वास ही नहीं, वो कल्याण के लिए प्रयास ही क्यों करेगा। और क्योंकि ईश्वर आनंद रूप है इसलिए जैसे जैसे उसका ठीक दिशा में प्रयास होगा उसके मन में आनंद आने लगेगा, संतोष, धैर्य, शांति उसके अंदर धीरे धीरे आने लगेगी। तो जब कल्याण रूप ईश्वर है, इसका मतलब हो गया कि सत सिमरन से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। अर्थात सत कहते हैं ईश्वर को, अर्थात ईश्वर सिमरन से मनुष्य का कल्याण संभव है, अन्यथा कल्याण का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो अब आगे प्रश्न उठता है कि फिर उसका सिमरन हो कैसे। उसके लिए महर्षि रमण ने एक बड़ा अच्छा छोटे से उत्तर के रूप में एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया था। एक प्रश्न के सामने रखा गया कि आत्मा का दर्शन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ईश्वर का दर्शन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो महर्षि रमण ने एक दो पंक्ति का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा, ईश्वर, गुरु, कुंडलिनी और मंत्र ये एक ही चीज है, इसमें से किसी एक के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, आत्मा व्यक्त हो जाएगी। फिर सुने, जब कहा गया कि ईश्वर दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है तो महर्षि रमण कहते हैं कि आत्मा, ईश्वर, गुरु, कुंडलिनी और मंत्र ये एक ही चीज है, इसमें किसी भी एक के प्रति अपना समर्पण कर दो, आत्मा व्यक्त हो जाएगी, अर्थात ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो अब सवाल है कि सबसे पहले कह दिया उन्होंने कि ईश्वर के प्रति समर्पण कर दो, अब कैसे करो। ये प्रश्न तो उठता है मन के अंदर, ईश्वर को हम जानते नहीं, उसको देखा नहीं, उसके प्रति समर्पित कैसे हो जाए। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, हम ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो सकते, मुंह से तो कह सकते हैं बहुत कुछ लेकिन कर्म में वो बात हमारे नहीं आएगी। जब ईश्वर हमारे सामने प्रकट ही नहीं तो समर्पण की बात ही खत्म हो जाती है। तो फिर भी कहीं तो वो ऐसा होता होगा, ईश्वर प्रति समर्पण होता होगा। हाँ होता है। तो गीता इस बारे में क्या करेगी? गीता के 13वें अध्याय में एक श्लोक में आता है, वहां कहते हैं कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति तेचित आत्मानम आत्मना। कहते हैं कि परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, इसका मतलब यह है कि ईश्वर जिनके अंदर प्रकट है उसका वो ध्यान किया करते हैं। जैसे कि आप कोई वस्तु आपके सामने यदि आंखों के सामने उपस्थित है तो आपको ध्यान से उसको देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, ठीक उसी प्रकार उसका वो ध्यान किया करते हैं। इसी को गुरुदेव आपने मंगलाचरण में देखा होगा, एक पंक्ति आती है, दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धा। वहां जब मंगल की या कल्याण की बात आती है तो कब दुविधा खत्म कब होती है? दुविधा का मतलब मन के संकल्प विकल्प ही दुविधा है, अन्य कोई दुविधा नहीं होती। मन के संकल्प विकल्पों को ही दुविधा कहा जाता है। तो कहते हैं दुविधा मिटती कब है? जब चरण कमल में चित्त स्थित होता है। और समता विलास में गुरुदेव चरण कमल का अर्थ लिखते हैं, चरण कमल का अर्थ लिखते हैं वो आत्मध्वनि। आत्मध्वनि का मतलब होता है नाद, जिसको आप ओम करके जानते हैं। तो नाद जब अंदर प्रकट होता है उस नाद पे जो ध्यान किया जाता है इसी को चरण कमल का ध्यान करना कहते हैं। तो ये तो वही कर सकता है जिसके अंदर नाद प्रकट हो। जैसे गुरुदेव के बचपन से ही देख लें, होश आते ही उनको इस बात का पता था कि ईश्वर क्या है, और उनकी जो घोर साधना है बचपन से जो है, जो आप जीवनी में पढ़ते होंगे, देखते हैं किस प्रकार से वो उस आप आनंद में लीन रहा करते थे बचपन से ही। तो जिनके अंदर ईश्वर बचपन से प्रकट है ये काम वो लोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या कहती है गीता? अगले श्लोक में कहते हैं, अन्ये तु एवं अजानंता शुद्ध्वा अन्येभ्यः उपासते, परंतु अन्य लोग इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले सत्पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। तो जो अन्य लोग हैं जिनके अंदर वो नाद प्रकट नहीं है, ये तो उसी के अंदर प्रकट हो सकता है जो पूर्व जन्म में जिसने जो है वो कुछ साधना करके कोई अवस्था प्राप्त करके ये चोला छोड़ा हो, तो वो अवस्था उसको बचपन से ही प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसके लिए तो ये संभव है। ऐसे जिन जो संस्कारित लोग नहीं है वो फिर क्या करते हैं? जो सिद्ध पुरुष होता है, जो गुरु होता है, वो जो बताता है साधना उससे सुनकर वो साधना किया करते हैं। तो ये उस साधना की बात जो है गीता करते हैं। तो अब महर्षि रमण की हम बात जरा रिपीट करके देखें। उन्होंने कहा था कि आत्मा, ईश्वर, गुरु, कुंडलिनी और मंत्र एक ही चीज है, इसमें से किसी के प्रति भी समर्पित हो जाओ आत्मा व्यक्त हो जाएगी। तो आत्मा या ईश्वर तो हमारे प्रकट नहीं है। तो दूसरा होता है कि गुरु यदि किसी को उपलब्ध हो पूर्ण सिद्ध पुरुष, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा वो कहता है उसके प्रति समर्पित हो जाओ और जैसा वो कहता है करना शुरू करो। जिसके बारे में गीता में जो है भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये उस शरणागति की बात है। लेकिन जिनके अंदर जिनके पास वो फिजिकल रूप में वो गुरु भी उपलब्ध नहीं, वो क्या करें? वो तीसरी बात महर्षि रमण कहते हैं कि मंत्र के प्रति समर्पित हो जाए। तो किसी सिद्ध पुरुष ने यदि किसी मंत्र के जाप के बारे में बताया हो और उस बात की अथॉरिटी आपके पास हो कि हाँ ये वास्तव में सिद्ध पुरुष की बात सही है, ये सिद्ध पुरुष ने ये बात कही है, यदि पूर्ण आपको विश्वास हो जाए कि नहीं ये बात ओरिजिनल है, सिद्ध पुरुष की ही है और सिद्ध पुरुष का ही मंत्र है और उसकी यदि परमिशन सिद्ध पुरुष की हो तो उस मंत्र को जाप करने से आपका कल्याण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो मंत्र है वो ईश्वर है, वो आत्मा है। बस यही संसारियों में और परमार्थियों में भेद खड़ा हो जाता है। ये सिद्ध पुरुषों की बातें मेरी और अन्य को या अन्य लोगों की बातें नहीं है। और महर्षि रमण की बात छोड़ दी है, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण वचना मत करके पुस्तक एक उपलब्ध है तीन वॉल्यूम के अंदर, तो मास्टर महाशय जो उनके परम शिष्य थे वो जब अपने गुरु के पास अर्थात रामकृष्ण परमहंस के पास बैठा करते थे, क्योंकि वो खुद टीचर थे इसलिए जो भी वार्तालाप होता था उसको एज इट इज नोट कर लिया करते, तो वही वार्तालाप उन्होंने जो है जैसे बाबू अमलोकानंद जी ने जीवन गाथा छपवादी, ऐसी उन्होंने जो है ये पुस्तक जो है वो छपवादी। तो उसमें मैं एक दिन पढ़ रहा था तो उसमें रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं वो भी सुन, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ईश्वर मंत्र और गुरु ये एक ही चीज है, ईश्वर मंत्र और गुरु ये एक ही चीज है। देखिए एक दक्षिण का सत्पुरुष है, एक पूर्व का सत्पुरुष है और उत्तर भारत में ये महात्मा मंगतराम जी के रूप में तीसरा सत्पुरुष है। देखिए इन बातों का, इनकी बातों का मिलान करके देखें हम जरा। और गुरुदेव भी कहते हैं त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, जन्म जन्म जाए भ्रमणा प्रभु चरण पाए विश्वास। तो महामंत्र के बारे में ये व्याख्या गुरुदेव ने अपने हाथ से लिखी, ये महामंत्र की व्याख्या तो गुरुदेव ने अपने हाथ से लिखी। तो ये बात कैसे से? वो कहते हैं कि ये मंत्र आपका मंगल करेगा, आपका कल्याण करेगा और कल्याण आपका ईश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकता। सारी फिलॉसफी तो यही बात कह रही है कि कल्याण रूप ईश्वर है, इसलिए ईश्वर के अलावा अन्य कोई वस्तु आपका कल्याण कर ही नहीं सकती। इसीलिए मंत्र जब तक स्वयं ईश्वर ना हो तेरा कल्याण संभव कैसे हो सकता। सारे गुरुओं की जरूरत यहीं पर आकर महसूस होती है। और गुरुदेव के बारे में तो गुरुदेव ने तो वाणी में एक जगह ये भी कहा है, दुखी जीव की सुन पुकार सतगुरु आए जगत उद्धार। जब काफी मात्रा में जीव दुखी हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करें, शांति उनके भंग होने लगती है, संसार में उनको आनंद आना कम हो जाता है या संसार की बेईमानियां मक्कारियां यहां की नफरत ईर्ष्या द्वेष देख देख के इनका जब मन परेशान होने लगता है और धर्म के नाम पर भी जब भ्रष्टाचार फैल जाता है वहां भी माया छा जाती है, मायाधारी गुरु आ बैठते हैं, तब ये जीव दुखी होता है। ऐसे दुखी जीवों की संख्या जब बढ़ जाती है, क्योंकि प्रभु तो कल्याण रूप है, वो जीवों के दृष्टा है, तो वो हम दुखी जीवों पर कृपा करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो उन्हीं को तो गुरु कहा जाता है। लेकिन दूसरा प्रश्न यहां खड़ा हो जाता है कि वो यदि उपलब्ध नहीं है फिर कल्याण कैसे संभव है। और यहां वाणी कह रही है कि दुखी जीव की सुन पुकार सतगुरु आए जगत उद्धार, वो पूरे जगत में उद्धार के लिए आए हैं। ये बात अपने आप में ये सिद्ध कर रही है, जिस गुरु की ये वाणी है उसने इस बात की गारंटी भी जरूर दी होगी कि वास्तव में जो मेरे प्रति समर्पित होगा उसका उद्धार निश्चित है। जगत लिखा है तो इसका मतलब है कि जगत के हर जीव का उद्धार संभव है यदि वो मेरे प्रति समर्पित हो जाए। लेकिन गुरु जब शरीर रूप में उपलब्ध नहीं होता हम उसके प्रति समर्पित कैसे होंगे? उसी के लिए ये शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, उसी के लिए ये वाणी पढ़नी पड़ती है। इसीलिए ये महामंत्र प्रकट हुआ था, ये जगत उद्धार के लिए ही प्रकट हुआ था। यही जगत गुरु है, अन्य कोई वस्तु जगत गुरु नहीं है, कोई शरीर जगत गुरु नहीं है। ये ईश्वर रूप है, ये अवतार है, इसके अवतरण को जब हम विचार करके देखे तो ये कैसे अवतरित हुआ था? गुरुदेव की मात्र 13 वर्ष की आयु में जब समाधि अवस्था में वो थे, नदी के किनारे जंगल में वो रात में विराजमान थे, उस समाधि अवस्था में ये मंत्र प्रकट हुआ था। ओम ब्रह्म सत्यम ये पहले दिन प्रकट हुआ, निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा दूसरे दिन प्रकट हुआ, सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम ये तीसरे दिन प्रकट हुआ। लेकिन प्रश्न उठता है कि समाधि अवस्था में जीव की हालत क्या होती है? अभी हमने सारा विज्ञान सुना, सारी फिलॉसफी सुनी कि मन तो होता है संकल्प विकल्प, लेकिन सत्पुरुष के अंदर संकल्प विकल्प तो होता ही नहीं, तो मन तो वहां होता ही नहीं। जब संकल्प नहीं है तो दूसरी चीज होती है बुद्धि या जीव या मनुष्य जो इन संकल्पों को देखता है। तो जब संकल्प ही नहीं है तो देखने वाला कौन रहा, इसलिए बुद्धि भी वहां गायब हो जाती है। तो ये मन और बुद्धि ये दोनों ही वहां होते ही नहीं है, वहां केवल ईश्वर ही ईश्वर होता है, जिसको हम नाद ब्रह्म कहा करते हैं, शब्द ब्रह्म कहा करते हैं, इसको हम ओम कहा करते हैं। तो जिस शरीर में केवल नाद ही नाद है वहां विचार करने वाली सत्ता तो है ही नहीं, वहां विचार तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि कुछ भी वहां प्रकट होता है वो नाद ही है, वो नाद का ही अवतार है या ईश्वर का ही अवतार है। इसीलिए जब ये मंत्र समाधि अवस्था में प्रकट हुआ ये ईश्वर का अवतार है। इसको बड़े ही सुंदर शब्दों में महर्षि रमण व्याख्या करते हैं, सर्वज्ञ ज्ञानोत्तर एक आगम शास्त्र है, 28 आगम शास्त्र में एक सर्वज्ञानोत्तर भी है, उसका एक चैप्टर है आत्म साक्षात्कार। उस आत्म साक्षात्कार का चैप्टर का ट्रांसलेशन महर्षि रमण ने खुद अपनी कलम से किया, और जो सत्पुरुष यदि को ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव किसी चीज की व्याख्या कर दें या ट्रांसलेशन कर दें, तो वो क्योंकि ईश्वर ही ट्रांसलेशन कर रहा है उसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, वो तो सत्य ही होगा, वो शास्त्र प्रमाण माना जाता है, शास्त्र ही माना जाता है। तो महर्षि रमण ने जब उसका ट्रांसलेशन किया तो उसमें एक पंक्ति जो हालांकि वो ट्रांसलेशन लंबा चौड़ा नहीं है, दो ढाई पेज का है, तो उसमें एक पंक्ति बीच में आती है जो मैंने नोट की थी अपनी डायरी में, वो मैं आपको सुनाता हूं। कहां वो लिखते हैं, मंत्र आत्मा का स्थूल रूप है, मंत्र आत्मा का स्थूल रूप है। यदि इसको उदाहरण के द्वारा समझे तो जैसे कि बर्फ पानी का स्थूल रूप है, बर्फ और पानी में कोई भेद नहीं है, रूप में भेद है, जो ही बर्फ को गर्मी मिलती है वो पानी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर जो है जो नाद रूप है, जब जीव दुखी होता है तो कृपा करने के लिए वो मंत्र रूप में अवतार ग्रहण करता है, इसीलिए वो जगत गुरु कहलाता है। इसलिए इस मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, सिद्ध मंत्र कहा जाता है। इसके अंदर वो शक्ति निहित होती है, छुपी होती है, या ये शक्ति का स्वयं पुंज होता है, जिस पार गुरु कृपा का पुंज होता है, उसी प्रकार ये मंत्र भी कृपा का पुंज हुआ करता है। जिसका भी विश्वास उस पर आ जाता है, जिसके अंदर भावना ये आ जाती है कि मैं इसके प्रति समर्पित होने को तैयार हूं, इसका कल्याण भी उसी वक्त से प्रारंभ हो जाता है। इसमें कोई देर नहीं लगती, उसी वक्त से इसका कल्याण प्रारंभ होता है। लेकिन शर्त यही है कि 100% विश्वास हो और तेरा पूर्ण समर्पण उसके प्रति तेरा। इसीलिए प्रभु तो कृपा कर जाते हैं, लेकिन हम मनमुखी मनुष्य जो है ना, ये शास्त्रों को भी बदल कर रख देते हैं, गुरु की लिखित परिभाषा को भी बदल देते हैं। कहते हैं महामंत्र के बारे में भी लोग कह देते हैं, ये तो खाना खाने से पहले 5 बार जब आता है, ये तो खाना हजम करने की चीज है या संसारी कार्य सिद्ध करने की चीज है। मतलब कि सत्पुरुष जो हुए वो तो कहते हैं कि मन और बुद्धि जब आत्मा में लीन होगी तब तेरा कल्याण होगा, और मंत्र प्रयोग करते हैं तेरे संसार के काम सिद्ध करने के लिए। ये कैसी उल्टी व्याख्या है। अरे सारी परिभाषा तो शास्त्र उनका कर रहा है कि ईश्वर को जानने से तेरा कल्याण होगा, सत्सिमरण से कल्याण होगा, और महामंत्र प्रकट करेंगे तेरे संसारी कार्य सिद्ध करने के लिए। लेकिन यदि तू मूर्ख है तो यह काम भी तू कर सकता है, क्योंकि है तो वह सर्व सिद्धिदाता, सब कुछ सिद्ध होगा। तूने विश्वास करके यदि संसारी चीज भी मांग ली वो भी तुझको प्राप्त होगी, लेकिन इससे बड़ी तेरी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। अरे संसार की वस्तु से पहले तू दुखी है, क्योंकि इस दुख के प्रकट होने से अब वो संसार की तरफ भागेगा नहीं, अब केवल ईश्वर की तरफ भागेगा। तो ये जो सिद्ध मंत्र होता है इसके सिमरन को ही सत सिमरन कहा जाता है। सत कहते हैं ईश्वर को, देखिए दुख बात आती है, सत कहते हैं ईश्वर को, तो सिमरन किसका कर रहा है, वो केवल ईश्वर का सिमरन करना है। और सिमरन के 2 तरीके गीता बता रही है कि एक यदि ईश्वर अंदर प्रकट हो, वो शब्द ब्रह्म प्रकट हो, तो उसका सिमरन हम कर सकते हैं, उसका ध्यान हम कर सकते हैं। जिसके अंदर प्रकट नहीं तो क्या करें, तो वो ईश्वर रूप जो सिद्ध मंत्र होता है, गुरुदेव का जो ये महामंत्र है जो कि सिद्ध मंत्र है, तो इस सिद्ध मंत्र का हम जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर रूप है। लेकिन यदि किसी ने इसको केवल संस्कृत शब्द समझा और इसके अर्थ ही करता रहा तो फिर वो सिमरन नहीं कर पाएगा। सिमरन के लिए ये आवश्यक कंडीशन है कि तेरे सामने केवल ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि तू सिमरन ईश्वर का कर रहा है। इसीलिए जो मंत्र को ईश्वर करके जानता है वही सही सिमरन या वही सत्सिमरन किया करता है। इसी के लिए ये महर्षि रमण की और रामकृष्ण परमहंस की ये जो परिभाषा है ये आपको बताई गई। महर्षि रमण कहते हैं कुंडलिनी मंत्र ही एक ही चीज है, और हम कहते हैं कुंडलिनी कोई नस होती होगी, जैसे समाज में प्रचलन चला है वो गुरु को रुपये दिए 1100 रुपए या उसके शिष्य बन जाइए वो कुंडलिनी खोल देगा आपको, क्योंकि नस है वो खोल देगा आपको, उसको आप बिना ऑपरेशन के, वो कला उसको आती है। अरे सत्पुरुष क्या कह रहे हैं, कुंडलिनी आत्मा को कहते हैं, कुंडलिनी शब्द ब्रह्म को कहते हैं। सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, तो आज्ञाकारी हो के घटका पाठ उगा। तो गुरु किस रूप में, कुंडलिनी रूप में तेरे अंदर बैठा हुआ है। सतगुरु की मिले दीखिया तब उठे आत्मा जाग। तो सतगुरु की दीक्षा प्राप्त होती है तो आत्मा जाग जाती है। इसका मतलब यह वही बात कह रहे हैं कि कुंडलिनी का जागरण, लेकिन आत्मा और कुंडलिनी एक ही चीज। क्योंकि संसारी गुरु जो है वो तो तरह तरह की परिभाषा करते रहते हैं, संसारियों को बहकाते रहते हैं। सिद्ध पुरुषों की परिभाषा देखो कि आत्मा ईश्वर गुरु कुंडलिनी मंत्र एक ही चीज है, इसमें से किसी के प्रति भी समर्पित हो जाओ आत्मा व्यक्त हो जाएगी। तो हमारा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा इस घोर कलयुग में कि एक फरिश्ता हमारे सामने आया, उस प्रभु ने भेजा और प्रभु सिद्ध मंत्र के रूप में महामंत्र के रूप में हमारे सामने प्रकट हो गए, और फिर भी यदि हम मूर्खता करते रहें उसके प्रति अपने आप को समर्पित ना करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं होता। साक्षात ईश्वर हमारे सामने मौजूद है, मात्र हमको अपना विश्वास वहां लाना है। और विश्वास के लिए गुरु वाणी उपलब्ध है आपके लिए। जिसने महामंत्र प्रकट किया है उसने वाणी भी तो लिखी है। वाणी का केवल दो श्लोक मैं आपके सामने पढ़ के खत्म करता हूं। ये विषय देखिए, वाणी कहती है, जो ध्याये नित प्रेम से पर से नहीं पकवाद, समता तत्व रसना मिले मोह ममता मिटे मूल प्रमाण। जो मोह है, मोह क्या है, मैं शरीर हूं, यही तो मोह है। इसका समूल नाश हो जाता है जब तू शरीर नहीं है तो फिर क्या है, फिर वो ईश्वर है। समता तत्व, समता कहते हैं ईश्वर को या ब्रह्म को, तो उसकी रचना तत्व को प्राप्त होती है। आगे देखिए वाणी क्या कहती है, कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत्व योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइए प्रभु दर्शन हो। ये महामंत्र की महिमा में ये गुरुवाणी कह रही है कि इन तत्व अक्षरों का, देखिए तत्व कहते हैं ईश्वर को, तत् को, ये अक्षर जो है वो ईश्वर रूप है। इन तत्व अक्षरों का जो नित्य गायन करेगा अर्थात सिमरन करेगा, प्रभु दर्शन हो इस योग, उसको प्रभु दर्शन प्राप्त होगा। ये लिखित गारंटी सिद्ध पुरुष खुद दे रहे हैं। इसके पश्चात भी यदि हम अपनी कमजोरी के कारण, अपनी कमियों के कारण उस सिद्ध वाणी पर भी हम विश्वास ना करें तो फिर हमारा भाग्य तो कम से कम इस जन्म में तो उदय नहीं हो सकता, अगले जन्म में देखा जाएगा पता नहीं क्या। तो हम सिद्ध पुरुषों की वाणी को समझें, उस पर विश्वास करना सीखें, विश्वास करके जैसा उन्होंने कहा उस पर चलना सीखें, तब निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और महामन के बारे में यदि हम सिमरन की बात करते हैं तो यही बात आती है कि सिमरन जो है एक एकाग्रचित होकर, एकांत में बैठकर, मौन होकर हृदय में मंत्र का जाप किया जाता है। और इन सिद्ध मंत्रों का श्वास के साथ कोई संबंध नहीं होता है, केवल मौन होकर हृदय में इस मंत्र का रिपीटेशन लगातार किया जाता है। जब आपका समर्पण धीरे धीरे बढ़ जाता है, जीवन आपका पीछे यदि सदाचारी होता है और सिमरन आपका निरंतर होता रहता है, तो जब प्रेम अंदर प्रकट होता है, संकल्प विकल्प कम होते हैं, उस समय यही मंत्र अपने मूल रूप में अर्थात नाद रूप में प्रकट होकर आपका कल्याण करके आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देता है। ओ ध्यान सत्य मंत्र,
ये संसार सराए जीव मुसाफिर नित मंगत खोज सत शांति अवध जात है भी छिन छिन ओसर जात है जैसे बहता नीर समान गया ना आएगा करो विचार मत भी जो आया तिस जाना ये खरा खरा ना खेल रहना किसे नहीं पाना जो जुग चारे में धरती गई नीर में नीर को पावक खाए पवन गिरा से पावक आकाश में पवन समा तत्वों में सब तत्व मिले रूप रंग मिट जाए आए, ये ही कला शरीर की छिन छिन रूप वटा, बाला बन को जो बन खाए, गई जरा जो बन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव बचता, बाला बन को जो बन खाए, गई जरा जो बन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव बचता, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।